प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 56 चालू कर अयम हि श्रुत संपन्नः शील वृत्त गुणालयः धृत व्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवाङ् मंत्र विच्छुचिः अयम यह हे निश्चितम श्रुत संपन्नः गुरुजनों के मुख से वेद शास्त्र का प्रवचन सुना हुआ शील वृत्त गुणालयः सुंदर स्वभाव सदाचार और क्षमा आदि गुणों का यह आलय रहा है। धृत व्रत ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन किया है। मृदु बहुत कोमल स्वभाव का है, था कोमल स्वभाव का था। दांत यह इंद्रियों को वश में रखता था। सत्यवान सत्य वचन बोलता था। मंत्रवीत वेद मंत्रों का ज्ञाता था। शुचि ही सदा पवित्र रहता था। गुरु गुरुजनों का, अग्नि अग्नि देवता का, अतिथि अतिथियों का, वृद्धानाम और वृद्धों का, ज्ञान वृद्धों का और वयह वृद्धों का, शुश्रूषु सेवा के लिए उत्सुक, अनहम कृतः और इन सब गुणों के कारण इसे कभी इन सब गुणों के कारण इसको कभी अहंकार नहीं हुआ। सर्वभूत सुहृत सभी जीवों का हित करता था। साधु बिल्कुल साधु था, निष्कपट। मितवाग थोड़ा बोलता था, व्यर्थ नहीं बोलता था। अनसूयकः किसी के गुणों में कभी दोष का आरोप नहीं किया। तो श्री जमराज जी के दूतों के मुख से अजामिल के विषय में बयान दिया जा रहा है कि यह एक नंबर का पापी है, इसे नरक ले जाने दीजिए, वहां ले जा करके हम लोग इसको शुद्ध करेंगे। अजामिल के पापों का वर्णन करने के लिए और उसे नरक में ले जाने के लिए जमराज के दूत सबसे पहले अजामिल के द्वारा किए गए अन्याय के अतिरेक का वर्णन करें, कितना अन्याय किया है। न्याय का अर्थ है जो जिस पोजीशन का व्यक्ति है वह काम करे तो इसको न्याय कहते हैं। जैसे अमृत है, अमृत पीने पर यदि व्यक्ति अमर हो जाए तो कहा जाएगा यह अमृत का न्याय है। विष पीने पर मर जाए तब कहा जाएगा कि ठीक न्याय है, क्योंकि विष का ही स्वभाव। तो कोई व्यक्ति पहले से बहुत अच्छा रहा है, शुद्ध रहा है, और यदि वह शुद्ध आचरण आज भी कर रहा है तब तो ये न्याय है। अन्यथा बड़ा होते हुए भी, महान होते हुए भी, उच्च कुल में जन्म लेकर भी, विद्यावान होकर या सत्संगति अच्छा प्राप्त करके भी बुरा करता है तो इसको अन्याय कहते हैं। तो अजामिल कितना अन्याय किया है इसको बताने के लिए पहले इसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अन्याय की अतिशयता का वर्णन करने के लिए पहले गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं अयम ही यह, अयम का अर्थ है यह, वो तर्जनी से उंगली से दिखा करके कह रहे यह, अरे पहले मत पूछो, इतना शुद्ध था, इतना बड़ा व्यक्ति था, लेकिन ये पापी गिर गया। ऐसे कह रहे अयम ही, और ही शब्द से ये बोधित कर रहे हैं कि इसमें कुछ विचारने की जरूरत नहीं है, निसंदेह यह बहुत अच्छा था। अयम ही यह श्रुत संपन्न, सबसे पहला गुण बता रहे हैं कि यह ब्राह्मण यह श्रुत संपन्न था, इसने बहुत सुना था, बहुत सुना है। गुरुजनों के मुख से जो वेद शास्त्र पर प्रवचन सुना जाता है तो इसको श्रुति कहते हैं, श्रुत संपन्न। जिस व्यक्ति को बारंबार भगवान के बारे में सुनने को मिले तो उस व्यक्ति के जीवन का यह परम सौभाग्य है। सबसे पहला गुण है अजामिल का वर्णन कर रहे हैं कि यह बहुत सुना है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति गुरुजनों के मुख से नहीं सुना है, जो बेचारा वो कुछ गलती करे तो कम अपराध माना जाएगा, लेकिन यह बहुत सुना है। अंततः अजामिल के अन्याय और अपराध का ही वर्णन करना चाहते हैं, न कि गुणों का। लेकिन इतना ऊंचा होते हुए भी गिरा है, मतलब बहुत ज्यादा गिरा है, यह बताना चाहते हैं। तो मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य, सबसे बड़ा गुण व्यक्ति का ये होता है कि उसे महत्पुरुषों के पास रह करके उनके मुख से सुनने का उसे अवसर प्राप्त हो, क्योंकि सुनने से ही विद्या प्राप्त होती है, सुनने से भगवान की प्राप्ति होती है, सुनने से व्यक्ति दुर्मति का त्याग करता है, सुनने से ही महान बनता है। आज भी यही परंपरा है, स्कूल में कॉलेज में लड़के जाते हैं क्या करने के लिए, श्रवण करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर सब केवल कचरा सुनाया जाता है। अंतर इतना ही है लेकिन प्रोसेस वही है, सुनने के लिए, सुनने के लिए। हम लोगों के सनातन धर्म में ये श्रवण ही मुख्य है, सुनने पर बहुत जोर दिया गया है। तो अजामिल का पहला गुण बता रहे हैं कि यह बहुत सुना है, संपन्न। संपन्न का अर्थ है पूर्ण, यह बहुत सुना है, वेद शास्त्र सुना है, और शील वृत्त गुणालय। इसके साथ ही साथ यह शील वृत्त और गुण का आलय रहा है। आलय का अर्थ खजाना, घर। शील का अर्थ सुंदर स्वभाव, नम्र स्वभाव। शील का अर्थ होता है बड़े लोगों के सामने नम्र होना और समान लोगों के साथ मित्रता रखना और अपने से हीन लोगों के प्रति दया करना, इसको शील कहा गया है संस्कृत में, सुंदर स्वभाव। तो यह शील का आलय रहा है, सिलवान क्या, शील का खजाना रहा है यह। यह बहुत ऊंचे वंश में जन्म लिया था। वृत्त, वृत्त का अर्थ आचरण, आचार, जैसा पहले के लोगों ने आचार किया सुंदर वेद शास्त्र के अनुसार, ऐसा इसका करैक्टर रहा है बहुत सुंदर। तो वृत्त का तो यह आलय रहा है और गुणालय, गुणों का आलय, गुण में जैसे क्षमा आदि, सहनशीलता, किसी के द्वारा किए गए अपराध को सहना, या शीत उष्ण मान अपमान सर्दी गर्मी सब सहना, इसको क्षमा कहते हैं, ये सहिष्णुता। किसी भी मनुष्य को ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमें सब समय सब जगह पर आदर ही मिलेगा या सब समय केवल एक स्थिति रहेगी। कभी कभी एक्सट्रीम हीट सहना पड़ता है, कभी ठंडा सहना पड़ता है, कभी अपमान होता है, कभी मान होता है, कभी भोग की वस्तुएं मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। तो अपने चित्त को सम रखना चाहिए, कभी भी हर्षित नहीं होना चाहिए और न तो विषाद में होना चाहिए, इसको क्षमा कहते हैं। तो ऐसे गुणों का यह खजाना रहा है, आलय रहा है। धृत व्रत, और इसने बहुत से व्रतों का पालन किया है। व्रतों में सबसे पहला व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। पहले के वर्णाश्रम धर्म में यह सबसे पहला व्रत सिखाया जाता था बच्चों को, 25 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, और गृहस्थ बनने के बाद भी ऋतु काल में पत्नी के साथ सहवास करते थे, वो ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। तो इसने ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन किया, अथवा वेदाध्ययन आदि के लिए जो नियम बनाया था गुरुजनों ने कि इस समय पढ़ना है, जप करना है, करना है, तो सारे व्रतों का पालन किया है, अथवा एकादशी आदि व्रतों का पालन किया है। व्रत शब्द यहाँ लिखा गया है, तो व्रत से जो भी अपेक्षित है एक ब्राह्मण के लिए, वो सारे व्रतों का इसने पालन किया। और इसके साथ ही इसका स्वभाव बहुत मृदु था, कोमल स्वभाव, भाषा में कोमलता, व्यवहार में कोमलता। किसी व्यक्ति को कठोर नहीं होना चाहिए, मृदु होना चाहिए। तो यह मृदु था। दांतः, दांत का अर्थ है बाह्य इंद्रियों पर संयम। इसकी आंख इसके वश में थी, इसकी नासिका वश में थी, कान वश में था, यह व्यर्थ शब्द नहीं सुनता था, व्यर्थ नहीं देखता था, इंद्रियों पर पूरा पूरा इसका नियंत्रण था, जितेंद्रिय था, कहने का आशय यह, इंद्रियों को वश में रखा था। और सत्यवांग, सब समय सत्य बोलता था। सत्यवांग का दो अर्थ है कि जो वस्तु जैसे देखा है सुना है उसको ऐसे बोलता था, और दूसरा अर्थ है कि जो बात सत्य है, सत्य बात ही इसके जिह्वा पर आती थी। सत्य है भगवान का नाम, गुण, लीला, वेद शास्त्र, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान के विषय में जो बोला गया है वही सत्य है। तो यह सदा भगवान के विषय में बोलता था, कहने का आशय यह, सत्यवान, कभी मृषा नहीं बोलता था, झूठ नहीं बोलता था। और मंत्रवित, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता था। यहां वित्त का अर्थ केवल जानकार ही नहीं, वैदिक मंत्रों को, श्लोकों को खूब जानता था, उनका मनन किया था और उसके अनुसार आचरण किया था, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता था। भगवान के द्वारा मनुष्य जाति को जो सबसे बड़ा दान दिया गया है वो है वेद, और वेदों के ही परिपूरक ग्रंथ हैं पुराण, इतिहास इत्यादि। तो इन ग्रंथों का ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए। इसके लिए ऋषियों ने परंपरा स्थापित की है, सवेरे पढ़ना सुनना। जितना लोग आज के युग में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इतना पहले के लोग भागवत पढ़ते थे, वेद शास्त्र पढ़ते थे, इसे ज्यादा पढ़ते थे। आजकल के लोग तो बहुत है, या तो न्यूज़पेपर पढ़ते देखे जाते हैं, अथवा टीवी पर बैठे हैं, अथवा गप मार रहे हैं, जीवन का लक्ष्य समझे ही नहीं, गुमराह है वास्तव में। तो जो ईश्वर के द्वारा मनुष्य को सबसे बड़ा दान दिया गया है, उस दान से लाभ लेना चाहिए। प्रतिदिन भागवत पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना चाहिए, अथवा यदि पढ़ने की सुविधा नहीं है तो सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। डायरेक्ट सुनने का अवसर मिले तो सुनना चाहिए, नहीं तो भगवान ने सीडी और कैसेट बना ही दिया है, उसके द्वारा सुनना चाहिए। पर भरना चाहिए रोज 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 रोज। तो इसको सत्यवांग कहें, जब भी बोलना है भगवान का नाम जप करना चाहिए। करता था यह, इसके द्वारा सिद्ध हो रहा है कि अजामिल वास्तव में एक भक्त था, पर बेचारा गिर गया। एक प्रसंग से उसका वर्णन जमराज के दूत करेंगे। सत्यवान, मंत्रवित, सुचि, और यह सदा पवित्र रहता था। सुचि का अर्थ बाहर से भी पवित्र, हमेशा स्नान करके रहता था, कपड़ा ठीक रखता था, घर द्वार साफ रखता था, और भीतर से कभी इसको भोगों की इच्छा नहीं हुई। इच्छाएं बिल्कुल शुद्ध थी, भीतर अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध था। इसको सुचि कहते हैं, पवित्र। दो तरह की पवित्रता है, बाह्य पवित्रता और अंतः पवित्रता। एक श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। सब बाह्याभ्यंतरो सुचि, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरे पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतरो सुचि। जो व्यक्ति कमल नयन भगवान कृष्ण का स्मरण करता है वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। केवल जल और साबुन से नहाने से पवित्र नहीं होता है व्यक्ति। जल और साबुन से तो बाहर शरीर की थोड़ी सी शुद्धि होती है, लेकिन मन को टच नहीं कर पाएगा साबुन और न तो पानी, गर्म या ठंडा पानी। मन में तो कचरा भरा रहेगा। तो मन को शुद्ध करने के लिए भगवान का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब गुण तो अजामिल में थे। अब ये कह रहे हैं कि गुरु, अग्नि, अतिथि, वृद्धा नाम शुश्रूष, यह गुरुजनों की सेवा करता था। ऐसा नहीं है केवल सेवा करके और इसके बाद थक जाता था, बाद में नहीं करता। शुश्रूषु हमेशा इसकी उत्सुकता बनी रहती थी कि कब गुरुजनों की सेवा का अवसर मिलेगा। यह गुरु का अर्थ है पिताजी, माँ, बड़े लोग, और फिर धर्म का, भक्ति का उपदेश करने वाला व्यक्ति या वेद शास्त्र पढ़ाने वाला, ये सब गुरु हैं। माता पिता को भी गुरु शब्द से ही अभिहित किया गया है शास्त्रों में। कहने की जरूरत नहीं है कि पिता शब्द लिखा जाएगा तब उसका अर्थ होगा, गुरु शब्द से ये सब अभिहित है। मतलब ये सब वाच्य हैं, पकड़ लिए जाते हैं। तो यह गुरुजनों की सेवा के लिए हमेशा उत्सुक रहता था, सेवा करता था, अग्नि का की सेवा करता था। अग्नि की सेवा का मतलब है नियम से हवन करता था, होम करता था, शाम सुबह जो उचित है। वास्तव में अग्नि देवता के साथ मनुष्य का बहुत बड़ा संबंध है, खास करके गृहस्थों का और ब्रह्मचारियों का। तो अग्नि की सेवा करनी चाहिए। अग्नि की सेवा का अर्थ है अग्नि मुख है ब्राह्मणों के, देवताओं के और भगवान के। तो इसलिए अग्नि में हवन किया जाता है तो वास्तव में अग्नि के द्वारा वो भगवान को या देवताओं को प्राप्त होता है। तो यह अग्नि की सेवा। अग्नि की सेवा करने का अर्थ वह देवताओं का सेवक था, भगवान का सेवक था। और अतिथि, अतिथियों का सेवक था। अतिथि का अर्थ जिसके आने का डेट पहले से मालूम न हो, अकस्मात बेचारा थका मंदा आ गया घर पर, तो उसकी सेवा करना है। और जो डेट डाल कर आते हैं उनको अभ्यागत कहते हैं। अतिथि और अभ्यागत में यह भेद है। तो अतिथि की सेवा भगवान की सेवा के समान मानी जाती है। पहले जमाने में इस तरह के होटल गेस्ट हाउस ये सब नहीं होते थे। कोई भी कहीं शाम होती थी, थक जाता था तो किसी गृहस्थ के यहाँ रुक जाता था, वहाँ भोजन मिलता था और अकोमोडेशन मिलता था बहुत आराम से, फिर वो चला जाता था। तो ऐसे अतिथियों की सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। तो यह अतिथियों की सेवा करता था, उन्हें खिलाना पिलाना, बैठाना, सुंदर वचन बोलना, और वृद्धा नाम शुश्रूष, वृद्धों का सेवक। दो तरह के वृद्ध होते हैं, एक वयह वृद्ध और दूसरा ज्ञान वृद्ध। तो जो उम्र में बड़े हैं उनकी सेवा तो स्वाभाविक समझ में आ जाती है, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको जरूरत पड़ती है, उनको भोजन देना, पानी देना, बैठने की सुविधा देना, कई तरह से सेवा की जाती है। तो यह सेवा करता था वृद्ध जनों की, और ज्ञानियों की सेवा करता था। ज्ञानियों की सेवा का अर्थ है उनके पास बैठकर सुनना, उन्हें सुख सुविधा देना। तो यह ज्ञान वृद्ध है, वयोवृद्ध, सबकी सेवा करता रहता था। और ये सब करके इतने गुणों के होते हुए भी अनहंकृत, इसे कभी अहंकार नहीं हुआ कि मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझ में ये गुण है, मैं ऐसी सेवा करता हूँ, महान हूँ, कभी इसको अहंकार नहीं हुआ। मनुष्य में जो भी गुण है उनमें यह गुण बहुत बड़ा है कि विशेषता होते हुए भी कभी मन में ये भाव नहीं आना कि हम बड़े हैं, हम अच्छे हैं और लोगों से हम यह करते हैं वह करते हैं, ऐसा भाव न होना ये बहुत बड़ी उदारता है, महान गुण है अनहंकृत। वास्तव में गुण थे अजामिल में, सब थे, लेकिन इसमें कोई अहंकार नहीं था कि हम गुणवान हैं, हम श्रेष्ठ जाति के हैं या हम विद्वान हैं। और सर्वभूत सुहृद, यह समस्त प्राणियों का सुहृद था। सुहृद, हृदय का अर्थ होता है हृदय, सभी प्राणियों के प्रति इसका सुंदर हृदय था, अर्थात सबका हित चाहता था, सबके हित करने की चेष्टा करता था। सर्वभूत में केवल मनुष्य ही नहीं है, वास्तव में मनुष्यों के साथ पशु पक्षी कीट पतंग सबके प्रति सौहार्द रखता था। आज के युग में तो आदमी सोचता है कि पशुओं को काट कर खा जाए, बाकी हम मानवता के और सभी जीवों के हितैषी। सर्वभूत का अर्थ केवल मनुष्य नहीं होता, सभी जीवों का हित हो, पशु पक्षी जो हैं, घर में कुत्ता है या चाहे चींटी भी है, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, किसी के जीवन में कोई बाधा न देना, जीने में सहायता करना, इसको सर्वभूत सुहृत कहते। तो सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखता था और साधु था। साधु का अर्थ निष्कपट, जिस व्यक्ति में कपट नहीं है, दुराव नहीं है, दंभ नहीं है, उसको साधु कहते। तो इसमें कपट नहीं था। और गुण बता रहे हैं, मित वाक, मित का अर्थ सीमित, वाक का अर्थ है बोली, बोलना, वचन। यह किसी विषय में यथार्थ बोलता था, कम बोलता था, हिंदी में कहते कम खाओ गम खाओ। गम खाने का मतलब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कम खाएगा आदमी तो शरीर का रोगी नहीं होगा, और गम खाएगा कम बोलेगा तो झगड़ा नहीं होगा, ये निश्चित है। ज्यादा बोलने पर ही झगड़ा होता है, कला होता है। ठीक जितना बोलना चाहिए देश काल के अनुसार, जितना उचित उतना ही बोलना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम कम बोले, ऐसा भी ठीक नहीं होता। कभी कभी कम नहीं कम बोलने वाले लोग ही ज्यादा क्रोधी देखे जाते हैं। देखा गया सांप सबसे कम बोलता है, लेकिन भेंट होने पर डस देता है। सांप को बोलते हुए नहीं सुना जाता, बहुत कम बोलता है। परंतु हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं कि नाति वक्ता नाति चुप, और नाति वर्षा नाति धूप, अति वर्षा ठीक नहीं है और अति सूखा भी ठीक नहीं है, और अति चुप हो जाना भी ठीक नहीं है और अति बोलना भी ठीक नहीं। मित वाक का अर्थ पर में यथार्थ बात बोलते। कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा कुछ न कुछ, कोई भी टॉपिक डाल दीजिए लगता है कि इस विषय में वेदव्यास जी हैं, किसी भी विषय, चाहे पॉलिटिकल चर्चा हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे ब्रह्म ज्ञान की बात हो, कुछ भी हो, बस बोलने में स्वभाव होता है। अपरिमित वाक होते हैं, उनके वचन की कोई सीमा नहीं होती, कुछ भी बोलते रहते। तो अजामिल यथार्थ वचन बोलता था, फालतू नहीं बोलता था। और अनसूयक, इसके गुणों में एक गुण बता रहे हैं लास्ट में, कि यह किसी के गुणों में दोष नहीं निकालता था। किसी के गुणों में जब हम दोषाविष्कार करते हैं, गुणों को ही दोष के रूप में कहते हैं, तो इसको असूया कहते हैं। असूया है वास्तव में उस व्यक्ति में गुण है, लेकिन गुण को ही दोष के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति साधु हो गया है, भगवान का प्रचार करता है, घूमता है, यह उसका गुण है, लेकिन उसके गुणों को ही दोष के रूप में कोई कह सकता है कि अरे ये पेट चलाने के लिए, जीने के लिए ये सब काम कर रहा है, कोई काम धंधा करना नहीं, कुछ नहीं, बस घूमना है। तो उसके गुणों में ही दोष निकाल दिए, गुणों को ही दोष के रूप में कह दिया, इसको असूया कहते हैं। अत्रि जी की पत्नी का नाम है अनसूया, कभी भी वह दूसरे के गुणों में दोष नहीं ढूंढी, दोष नहीं निकाली, गुणों को गुण समझना, प्रशंसा करना। तो इस तरह का अजामिल था, कभी किसी पर दोषारोप नहीं किया, कभी किसी का क्रिटिसाइज, कभी किसी की निंदा नहीं किया। अच्छा, तो भगवान के पार्षद तो चकित हो गए, तब इतने महान गुण वाले को तुम लोग नरक में क्यों ले जाना चाहते हो? तब तो सुनिए, तो यही तो बता रहे हैं कि कितना पापी है, कितना अच्छे कुल का होकर, विद्वान होकर, बुद्धिमान सदाचारी होकर के भी कितना गलती किया है, तब इसके पापों की कथा कह रहे हैं। एकदा सौ वनम जातः पितृ संदेश कृत द्विजः। एकदा असौ द्विजः, एक बार यह ब्राह्मण ऐसे कर, असौ द्विज, असौ का अर्थ है यह, एकदा एक समय एक दिन यह ब्राह्मण पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनम जाता, वन में गया। अच्छा, ऐसे पिकनिक करने के लिए गया होता तो इसका अपराध माना जाता, ऐसे ही ऐसी समय आदत थी नहीं, इसके द्वारा सिद्ध होता है कि पिता का भक्त था। पितृ संदेश कृत, पिता ने संदेश दिया कि बेटा जा करके वन से फल पुष्प समित कुसान, कुछ फल कुछ पुष्प और हवन करने के लिए लकड़ी और कुश घास लाओ, ये सब पूजा की सामग्रियां मांगी गई थी, और वही वन में से ये सब आती हैं, फल पुष्प समित कुश, चार चीज एक ब्राह्मण के लिए यज्ञ करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए इन वस्तुओं की जरूरत पड़ती। तो पिता ने कहा कि जाकर लाओ, वो कोई सुपरमार्केट में नहीं भेजा, बाजार में नहीं भेजा, वन में भेजा। तो गया बेचारा, स्वाभाविक अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। ये एक दिन वन में गया, द्विजह कह रहे हैं जिसका द्विजाति संस्कार हुआ था, यह गया और पिता की आज्ञा के अनुसार आदाय ततः आवृत, आदाय लिया भी, पुष्प कहीं कहीं से तोड़ा, विविध प्रकार का फल भी लिया, बहुत पवित्र काम किया, वन में फल लिया, कोई खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, पहले वन में फल भरे रहते थे। तो फल लिया, फूल लिया, कुछ सूखी लकड़ियां लिया और कुश लिया। कुश जो पवित्र घास है, भगवान की पूजा में प्रयुक्त होता है, तो ये सब लिया। और फल पुष्प समित कुशान आदाय ततः आवृत, अब वन से लौटने की सोचने लगा, ले लिया सब सामान। कितना पवित्र इसका जीवन था, एक तो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए गया है, वन में फल पुष्प समित कुश लेकर के लौट रहा था। तो एक इसके जीवन में घटना घटी, जब फल पुष्प समिधा और कुश लेकर के लौट रहा था, तो वन में ही पथ में रास्ते के बगल में ददर्श कामिनम कंचित शूद्रम सहभुजी से, उसने रास्ते में एक शूद्र को देखा और कामिनम शूद्रम जो कामी था, कामी का अर्थ होता है जिसमें काम हो, काम का अर्थ है इच्छा, लेकिन रूढ़ अर्थ है इसका स्त्री लंपट शूद्र को देखा, कामी शूद्र को देखा। ददर्श कामिनम कंचित, कंचित का अर्थ है किसी। अब सुखदेव गोस्वामी जी उसका कोई एड्रेस या और सब नहीं बता रहे हैं कि कहां का था क्या था, इसकी जरूरत क्या है। कोई अगर जिज्ञासा करे वो कामी कहां का था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अथवा अजामिल जब देखा कामी को तो उसे पता नहीं चला कि कहां का है, किस गांव का है, किस शहर का है। देखा ददर्श कंचित कामिनम शूद्रम सह भुजिष्यया, उस शूद्र को, उस कामी को अजामिल ने देखा भुजिष्यया सह भोगस्त्री के साथ। भोगस्त्री का मतलब यहां है ऐसी स्त्री जो पब्लिक स्त्री थी, वेश्या, जिसको कोई भी भोग सकता था, तो उसको भुजिष्या कहा गया संस्कृत में। और भुजिष्या सह उस भोग स्त्री, उस वेश्या के साथ शूद्र था। क्या कर रहा था? तो भुजिष्या का वर्णन कर रहे हैं, वो वेश्या कैसी थी, पीत्वा च मधुमेह रेयम मदा घोणित नेत्रया, वह वेश्या मदिरा पी ली थी, पीने की आदत होगी ही उसको, और उस समय वो पी थी खूब। मदा घुलित नेत्रया, मदिरा पीने के कारण वो नशे में हो गई थी, और नशा में होने से उसकी दोनों आंखें घूम रही थी। यह अजामिल देखा प्रथम बार जीवन में, इसे नहीं देखना चाहिए था, अपना रास्ता पकड़ करके चला जाता, लेकिन इसने प्रथम बार तो प्रयास किया। जब ही दृष्टि पड़ी तभी सोचने लगा, रही मैं ब्राह्मण हूं, मैं इस पिता का पुत्र हूं, मुझे सब नहीं देखना चाहिए, लेकिन मन का समाधान हुआ नहीं, आंखें देखने में फंस गई, देखने लगा। यह भी देख रहा है कि वेश्या की आंखें कैसे उद्घृणा में हैं, घूम रही हैं, अरे समझ गया कि ये शराब पी ली है। बहुत भारी यह पतन है मनुष्य के जीवन में, शराब पिए, शराब से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महात्मा गांधी से एक बार पूछा गया था कि भारत स्वतंत्र होगा तो सबसे पहला नियम आप क्या लगाएंगे, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि सबसे पहला नियम स्वतंत्र भारत में यह मैं करूंगा कि शराब नहीं पिएगा कोई, क्योंकि इससे बुद्धि नष्ट होती है। और आजकल तो आदत हो गई कि सब लोग पी रहे हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पी रहे हैं, पी रहे हैं। उसको भद्दे शब्दों में शराब वराब न कहकर अल्कोहल कहते हैं, ये कहते हैं, कुछ और कहते हैं, बहुत पीते हैं और यह बहुत बुरी आदत है। जो शराब का हुआ शिकार उसने फूंक दिया घर बार। दिल्ली के सड़कों पर सब जगह शराब पीना मना किया गया। पर आश्चर्य है कि जगह जगह शराब का बहुत बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट, दुकानों का नाम, उतना ज्यादा और किसी भी वस्तु का प्रचार नहीं है जितना शराब का। ठेका, देसी शराब, अंग्रेजी शराब, जगह जगह कहीं भी जाइए देखने को मिलता। तो पता नहीं लगता है कि सरकार को क्या हो गया है। एक तरफ तो मद्य निषेध विभाग चलता है, शराब छुड़ाना, शराब की बुराई करना, सब जगह वो विभाग है सरकार में, डिपार्टमेंट, और दूसरे तरफ लाइसेंस दे दे करके शराब मैन्युफैक्चर करना और बेचवाना, यह भी शायद विभाग भी होगा कि नहीं। इस तरह से चलता है। मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी खाए और कुछ भी पिए। जैसे यह शरीर है, जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई कार है, तो कार को किस चीज से चलाना है, पेट्रोल से चलाना है कि डीजल से चलाना है, वो ऊपर से ही कंपनी निश्चित करती है। ऐसा नहीं है कि आप पानी डालकर चला लीजिए या कूड़ा करकट डालकर चला लीजिए। तो भगवान ने शरीर दिया है तो इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि इसको मैं क्या डालकर इसको चलाना है। इसमें डाल सकते हैं दूध, सब्जी, जल, घी और भी कुछ पेय हैं, कुछ जूस है, इसको डालकर चलाना चाहिए। लेकिन इसके भीतर मांस और शराब डालने पर अपराध होगा। इंजन तो ध्वस्त होगा ही और बाकी जो कर्म का नियम लगेगा, फल बनेगा, वो तो बहुत भयंकर होगा। ऐसा लिखा गया है श्रीमद् भागवत में कि शराब पीने वाले को तरल लोहा पीना पड़ता है नरक में। तो यह स्त्री जो अजामिल ने देखा किसी शूद्र के साथ थी, तो वो शराब पी ली थी और शराब पीने से उसके नेत्र उद्घृणा से युक्त हो गए थे, आंखें घूम रही थी। मैरेय मधु पी ली थी। मैरे का अर्थ है पैष्टिम मधु। पैष्टी का अर्थ है आटा से, पिसान से बना हुआ शराब। शराब कई तरह से बनाया जाता है, चावल को सड़ा करके भी बनाया जाता है, चावल से बनाया जाता है, गेहूं से बनाया जाता है, फलों से बनाया जाता है। सड़ा सड़ा करके जो बनाया जाता है उसको शराब या शराब कहते हैं। आब का अर्थ है पानी। एक अखंडानंद सरस्वती वृंदावन में हुए हैं तो वो कहते थे आब का अर्थ है पानी। जैसे उर्दू में कहते आबो हवा, जल वायु, तो आबो हवा मतलब जल वायु, तो आब का अर्थ या अप का अर्थ, ऐसे संस्कृत में भी जल होता है। तो शराब का अर्थ है सड़ा हुआ पानी। जैसे भी ये सड़ा करके ही बनाया जाता है, तो सड़ाया हुआ लिक्विड शराब माना गया। और इस सड़े हुए पानी को, लिक्विड को लोग पी करके और अपने को सुखी मानते, शराब। उसको मैरे मधु पी ली थी। मत्तया, वह स्त्री मत्त हो गई थी, मतलब देह का अनुसंधान उसको नहीं था। मत्ता का ही अर्थ, और उसी का वर्णन कर रहे हैं विश्लथत निव्या। वो मत्त हो गई थी इसलिए वो कपड़ा भी नहीं संभाल रही थी, उसकी नीवी विशेष रूप से स्खलित हो रही थी, अपने स्थान से उसकी नीव, उसका बेल्ट हट गया था। ये अर्थ है। ये जमराज के दूत वर्णन कर रहे हैं लेकिन उनको वर्णन करने में कोई हिचक नहीं हो रही है। व्यास देव उनके मुख से ही ये सब कहलवा रहे हैं, परंतु जो भी हो सुनने वाले बाकी बैकुंठ के पार्षद हैं, भगवान के भक्त सुन रहे हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी गलत बोले, कुछ भी बोले, जब एक बार बोल रहा है तो दूसरे पक्ष का यह स्वभाव होना चाहिए कि सुने, शांति से सुन ले, झगड़ा ना करे। अब भगवान के पास कह सकते थे बस बस चुप रहो बंद करो, क्या इसके पाप का वर्णन करते हो, पापी है ही नहीं, तो झगड़ा होता है। लेकिन जमराज के दूत जितना बोलना चाहते थे भगवान के पार्षद उतना सहन कि ठीक है बोलिए, तो लोग बोल रहे हैं कि यह उस देखा उस शूद्र को उस वेश्या के साथ, वह वेश्या शराब पी ली थी, वो बिल्कुल मदमत्त हो गई थी, उसकी आंखें घूम रही थी, उसकी नीली शिथिल हो गई थी, और यह व्यपेतम ये दुराचारी आचार भ्रष्ट हो गया था बिल्कुल। कौन अजामिल नहीं, उस शूद्र को यहां कह रहे हैं व्यपेतम आचार भ्रष्ट था, थोड़ी भी लज्जा भी नहीं थी, निरपत्र पर त्रपा नहीं थी कि रास्ते में वन में जहां लोगों का आना जाना था वैसे स्थान पर उस वेश्या का लिंगन किया था, चुंबन कर रहा था और अनेक प्रकार क्रियाएं कर रहा था, इसको व्यपेतम और निरपत्रपम कहते हैं, बिल्कुल निर्लज आचार भ्रष्ट हो गया था वह शूद्र। क्रीडंतम अनुगायंतम हसंतम अनयंति के, वो उसके साथ खेल कर रहा था, क्रीड़ा कर रहा था, कभी कोई क्रीड़ा कभी कोई क्रीड़ा, अनुगायंतम और वह गाती थी तो उसके साथ गाता था, कभी कभी गाता था उसको गाती थी, तो वो इसी तरह मदमत्त होकर कहीं गा रही थी वैसे तो उसके साथ ये गा रहा था, वो इसके बारे में गा रही थी तो वो उसके बारे में गा रहा था, अनुगायन हसंतम अनयंति के, और उसके निकट खूब हंस रहा था, हंस रहा था, कुछ बातें करके हंस रहे थे रहते। इस तरह से अजामिल देखा, तब यह प्रश्न होता है कि अजामिल क्यों देखा। जमराज के दूत बता रहे हैं कि इसके कई जन्मों का पाप एक जगह इकट्ठा हो गया और वह प्रेरित कर दिया देखने के लिए। मनुष्य के कर्मों का स्टॉक साथ साथ चलता है जो कुछ भी, और कर्म का जब फलोन्मुख होता है तो उस समय वैसी मति दे देता है। जो वन में गया वहां जाकर को देखा, तो जो कुछ भी हो एक दृष्टि से यह कहा जाएगा कि इसके जितने भी शुभ कर्म थे वे सब इकट्ठा हो गए। यदि यह वेश्या को नहीं लाया होता घर में और बच्चे का नाम नारायण नहीं रखा होता तो यह इसी जन्म में वैकुंठ नहीं गया होता। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि इसके शुभ कर्मों का फल था कि अशुभ कर्मों का फल था उस दृश्य को देखना। यदि वो नहीं देखा होता तो वास्तव में भगवान के पार्षदों का दर्शन भी उसे नहीं हुआ होता है। अतः शास्त्र इस विषय में चुप है कि शुभ कर्मों का फल था या अशुभ कर्मों का फल था कि वह इस दृश्य को देख। जो भी हो बाह्य दृष्टि से तो यही लगता है कि इसके पापों का फल था कि वो वेश्या को देखा शूद्र के साथ, या शूद्र को देखा वेश्या के साथ। दृष्ट्वा ताम काम लिप्ते न बाहुना परिरंभिताम जगाम हृच्छय वसम सहसैव विमोहितः। दृष्ट्वा ताम काम लिप्ते न, अजामिल ने देखा उस वेश्या को कि कामोद्दीपक अंगराग से युक्त शूद्र की बाहों में वह लिपटी हुई है। शूद्र अपने बाहों से उसका आलिंगन किया था तो उसके बाहों में, शूद्र के बाह में काम लिप्त था। काम का अर्थ काम को बढ़ाने वाला अंगराग पेस्ट लगाया था, खास करके हरिद्रा हल्दी यह काम को उद्दीप्त करता है, तो हल्दी लगाया था अपने बाह में और उस बाह से उस शूद्र का वेश्य का आलिंगन किया था। इसको देखकर अजामिल विमोहित विमोहित हो गया। यहां विमोहित का अर्थ है कि अजामिल के मन में यह बात तुरंत आ गई, ओहो यह शूद्र कितना सुखी है, कितना आनंद में है, इसको मोह कहते हैं। मन में भिन्न विचार आ जाना अपने स्वभाव से, इसको मोह कहा गया, विमोहित हो गया। मन में इच्छा होने लगी कि अहो क्या मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं इस व्यक्ति की तरह कभी इस स्त्री का आलिंगन करूंगा, ये मोह हो गया सहसा। और यह मोह होते ही हृदय वसम जगामा, काम के अधीन हो गया, काम वासना उसके मन में पूर्ण रूप से जग गई और उसके पूरा पूरा वश में हो गया। अब यह विचार सब चला गया कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं भगवान का भक्त हूं, मैं श्रेष्ठ कुल का हूं, वेदाध्ययन आदि करना, शुद्ध आचरण करना मेरा धर्म है, ये सब बातें चली गई तुरंत। ये सब देख करके हुआ। श्रील प्रभुपाद इस प्रसंग में कहते हैं कि एक बार एक शूद्र को एक वेश्या के साथ देख करके अजामिल इतने ऊंचे पोजीशन से गिर गया, और जो लोग रोज ही टीवी वगैरह देखते रहते हैं वे क्या कितना गिरेंगे, क्या दशा होगी, इतना बड़ा सर्वनाश हो रहा, इतना शुद्ध व्यक्ति और एक दिन इस दृश्य को देख करके गिर गया। दूसरों के लिए गिरना क्या है, न सयानो पतत्य था, जो व्यक्ति नीचे सोया है वो गिरेगा क्या, जो पहले से ही गिरे हुए हैं तो उनके गिरने का क्या प्रश्न है ना, पहले से ही मन ऐसे भोगों में है, बाणी ऐसे है, ये है वो है, गिरना नहीं कह सकते। संस्कृत में कहते हैं न सयान पतत अध, जो व्यक्ति सोया है जमीन पर वो क्या गिरेगा, केवल करवट भर बदले गिरेगा क्या, तो ऑलरेडी धरती पर गिरा हुआ है। न सयान पतत अध, अजामिल वास्तव में बहुत एलिवेटेड पोजीशन से गिरा, इतना शुद्ध ब्राह्मण और उसके मन में किसी स्त्री की वासना आ गई भोगने की, उसके साथ रहने की, तो यह बहुत बड़ा पतन है। और कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में सबसे भारी प्रतिबंध, सबसे बड़ी बाधा है स्त्री। स्त्री नहीं, स्त्री के प्रति जो किसी साधक के मन में कामना हो जाए तो यह इसके लिए बहुत बड़ी बाधा है, भक्ति को नष्ट कर देती है यह वासना, दुर्वासना। तो अजामिल के जीवन में दिखाया जा रहा है कि उसने देखा, देखने का ऐसा प्रभाव हुआ वो अब नेत्र को रोक नहीं पाया, उसने रोकने का प्रयास भी किया। इसमें जमराज के दूत बता रहे हैं, स्तंभयन आत्मनात्मानं जावत सत्वं जथाश्रुतं, अजामिल का जहां तक सत्व धैर्य काम किया और जहां तक ज्ञान काम किया, स्तंभयन आत्मनात्मानम, अपने बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा आत्मानम, अपने चित्त को स्तंभित करने की चेष्टा किया, रोकने की चेष्टा किया, तो मन में एक बार आ रहा था सत्व धैर्य कि न देखू, नहीं देखू, मैं क्यों इस निकृष्ट दृश्य देखूंगा, इस ये मन में आया, धैर्य आया, मैं ऊंचे कुल का हूं, मैं आचार विचार वाला हूं, मैं भक्त हूं भगवान का, मुझे नहीं देखना चाहिए, इसको सत्व कहते हैं, धैर्य, धैर्य लगाया लेकिन फेल कर गया, नहीं समाधान हो सका। ज्ञान भी लगाया जथाश्रुतम, इसने सुना था गुरुजनों के मुख से जीवन का उद्देश्य, भगवान की बातें, तो ज्ञान का भी बल लगाया, धैर्य का बल लगाया, ज्ञान का बल लगाया, श्लोकों को याद कर रहा था और सब चीज वेद शास्त्र की याद करने लगा कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। न ससाक समाधान तो मनो मदन वेपितम, कामदेव के द्वारा इसका मन इतना झकझोर दिया गया था, इतना वश में हो चुका था कि न ससाक समाधान, मन को वश में करने में समर्थ नहीं हुआ, मन में इच्छा हो ही गई देखने की, इसलिए आंखें देख रही थी, अब मन में हर एक इच्छा उत्पन्न हो गई कि इसकी बातें सुनूंगा, इसका आलिंगन करूंगा, इसके साथ रहूंगा। यद्यपि वह एक विवाहित व्यक्ति था, बहुत उच्च कुल से लड़की उसको मिली थी, विवाहित था, लेकिन अब इसके मन में हो गया इस शूद्र के साथ रहने की, नहीं समाधान कर पाया। देखिए यहाँ पर एक संदेश दिया जा रहा है कि मनुष्य का ज्ञान काम नहीं करता है, कितना भी ज्ञान हो, ये कितना आचार विचार हो, कितने बड़े कुल का हो, कुछ भी काम नहीं करता है। काम वास्तव में भगवान करते हैं। इसीलिए व्यक्ति को विद्या अभिमान छोड़ करके, आचार विचार का ज्ञान अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में रहना चाहिए। अजामिल का कोई भी गुण उसको रोक नहीं पाया उस विषया में आसक्त होने से, कोई भी गुण नहीं रोक पाया, सब फेल हो गए। उसने लगाया, यदि कोई ऐसा कहे कि नहीं नहीं उसने ज्ञान का बल लगाया नहीं, आचार का बल लगाया नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जमदूत गण कहते हैं कि स्तंभयन आत्मनात्मान, अपने बुद्धि के द्वारा अपने चित्त को रोकने की चेष्टा किया, लेकिन न ससा कह न समर्थो अभूत, समर्थ नहीं हुआ, सफेद हो गया। अतः किसी व्यक्ति को कहीं गलत जगह पर पांव रखना है, कोई गलत चीज देखना है सुनना है, और ये वो सोचे कि नहीं नहीं मैं देख रहा हूं हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, मैं सुन लिया मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, नहीं ये गलत है। विश्वास होता है मनुष्य को कि मैं नहीं गलत सोचूंगा, देखने में क्या है देख लेने दो, खाने में क्या है खाने दो, लेकिन नहीं, वो गिर ही जाएगा। उस समय बुद्धि कौशल या परिवार का आचार विचार काम नहीं करता। इसीलिए सारा अभिमान छोड़ करके भगवान की शरण में रहना चाहिए। भगवान ही बचा सकते हैं किसी को, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। या सत्व का बल काम नहीं किया, धैर्य का बल काम नहीं किया। धैर्य का ही अर्थ है कि अरे मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, हमारा समाज है, मैं गुरु हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, सोचेगा व्यक्ति, लेकिन वो बच नहीं सकता, वो काम नहीं करेगा। भगवान बचाएंगे तो बच जाएगा। इसीलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए, हे कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए, तो उसकी रक्षा हो जाती है। अजामिल सारे गुणों को लगाया रोकने में मन को, लेकिन मन रुका नहीं, काम के वश में हो गया, मोहित हो गया। तन्निमित्त स्मर व्याज ग्रह ग्रस्तो विचेतनः, तामेव मनसाध्यायन स्वधर्माद् विरामः। वास्तव में तन्निमित्त उसे शूद्र का या उस स्त्री का, उस वेश्या का दर्शन ही जिसमें कारण था, उस काम रूपी ग्रह से ये ग्रस्त हो गया। वास्तव में इसको एक ग्रह पकड़ लिया, नाम था उस ग्रह का स्मर, काम ग्रह, काम नाम था, व्याज का अर्थ है नाम, काम नामक ग्रह से वो ग्रस्त हो गया। तो जैसे कोई व्यक्ति को ग्रह लग जाता है तो वो अपने स्वरूप में नहीं रहता है, वो बकता रहता है, रोता है, चिल्लाता है, हंसता है, सब कुछ भूल जाता है, उसे बिल्कुल याद नहीं रहता है कि मैं इस परिवार का हूँ, मेरा यह नाम है, मेरा यह काम है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ग्रह से ग्रस्त जीवों को आपने देखा होगा, जैसे कोई भूत से ग्रस्त हो जाता है, ग्रह से ग्रस्त हो जाता है, तो अपने स्वरूप में नहीं रहता है। इस तरह से अजामिल हो गया ग्रह ग्रस्त। विचेतना, विचेतना का अर्थ गत स्मृति, उसकी स्मृति बिल्कुल चली गई कि मैं ऐसे बाप का बेटा हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना शुद्ध हूं, ये सब बिल्कुल चला गया। काम इतना हृदय में उदित हो रहा था कि उस स्त्री के अतिरिक्त तो और कुछ सोच ही नहीं सकता था, वो कुछ भी नहीं सोच रहा था, केवल मनोरथ उसी स्त्री के प्रति हो रहा था कि कब उसको घर में लाऊंगा, उसके साथ रहूंगा, उसके साथ जीवन बिताऊंगा, बस यही याद रहता था, और सब सब स्मृति चली गई। इसको विचेतना कहते हैं, विपरीत चेतना, स्मृति चली गई। और तामेव मनसा ध्यायन, ताम एव मनसा ध्यायन, ताम वेश्या, उस वेश्या को ही मन में सोच रहा था। एव शब्द का अर्थ है कि अब और कुछ भी स्मरण से नहीं था कि हमें पूजा करनी है, हमें जप करना है, हमें पिताजी की सेवा करनी है, हवन करना है, अतिथियों की सेवा करनी है, वेद का अध्ययन करना है, श्रवण करना है, कुछ भी याद नहीं रहता था। जैसे पहले ही बताया गया कि जैसे किसी को ग्रह लग जाए तो उस व्यक्ति को घर के काम धंधा देह आदि की शुद्ध नहीं रहती है। इस तरह से अजामिल की इसकी दशा हो गई। ये जमराज के दूत गण वर्णन कर रहे हैं। तामेव मनसाध्याय एव अन्य स्मरण का निषेध कर रहा है, और कुछ भी याद नहीं रहता था, केवल उस विषय का स्मरण रहता था। और इस तरह से स्वधर्माद विराम, अपने धर्म से बिल्कुल विचलित हो गया। अब स्नान करना, हवन करना, जप करना, भगवान की पूजा करना, माता पिता की सेवा करना, इन सब धर्मों से बिल्कुल विरत हो। आपने देखा है किसी को ग्रह लग जाता है तो उसकी क्या दशा होती है। इस तरह से न तो स्नान करता था, न वेद पढ़ता था, न पिता की सेवा करता था, न हवन करता था, न भगवान की भक्ति करता था, उस विषय का ही चिंतन करने लगा। तमेव मनसा ध्यायन स्वधर्माद विराम, अपने धर्मों से चिवत हो गया, कोई नियम पालन नहीं करता। अंत में वह गया उसके पास, कई दिन दशा रही लेकिन पता लगा करके जैसे तैसे, और उस विषय के पास वो गया और वेश्या को अपने घर लाया। वेश्या उसको बहुत पैसा दिया, इसमें लिखा गया है, तो पैसे से उसको संतुष्ट किया और उसको घर में लाया, जबकि अपनी विवाहिता पत्नी थी, लेकिन फिर भी घर में लाया। ताम एव तोषया मास पितरेण अर्थेन जावत, जितना धन था अपने पिता का अजामिल के पास, सारा धन उस वेश्या को तुष्ट करने में लगा दी। तामेव तोषया मास, अब अजामिल के जीवन में ये कहीं डीटी रह गया था, आराध्य वेश्या किसी तरह प्रसन्न रहे बस। ताम एव उसी को ही तोषया मास तुष्ट करने में लगा रहा, जैसे खुश रहे। अगर वो कहे अभी बनारसी साड़ी लाना है तो बस उसी दिन रिजर्वेशन करके चला गया, तो यहाँ का ये लाना है, यहाँ का ये अलंकार लेना है, वहाँ का ये लेना है, वो लेना है, बस लाना ही था। इसलिए जमदूतगढ़ कह रहे हैं कि पितृण अर्थे ना, जहाँ तक पिता का धन था, इसका अर्थ श्रीधर स्वामी समग्र किए, पिता का सारा धन जो पहले से प्राप्त था, इसको उस वेश्या को तुष्ट करने में लगा दिया। पिता के लिए एक पैसा खर्च नहीं किया और स्वयं भी बिना खाए पिए रह जाता था, इन सारा धन वेश्या को संतुष्ट करने में लगाया। तोषया मास, तोषया मास उसको खुश रखता था। ग्राम्यई मनोरमयी कामयी, किन बातों से वेश्या संतुष्ट होती थी? ग्राम्य ही काम है, काम का अर्थ है कुछ वस्तुएं। ग्राम्य ही, ग्राम्य का अर्थ है विषय भोग की जो भी वस्तुएं थी, उन वस्तुओं को मांगती थी और ये लाता था खरीद खरीद कर, जैसे भी हो उसी को संतुष्ट करने में लगा रहता था। और कहते थे डिज्नीलैंड चलो, तो उसी दिन बस फ्लाई कर जाते, उसी दिन कोई देर नहीं करता था। ये देखना है, ये खाना है, इस पार्टी में चलो, मंदिर में क्यों जाओगे, क्या जरूरत है वहां जाने की। कभी मान लीजिए अजामिल सोचा भी होगा, क्योंकि भक्त था तो सोचा भी होगा कि कम से कम संडे को ही मंदिर में जाना चाहिए, तो वो कहती थी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो जो काम करने के लिए कहती थी, जहां जाना चाहती थी वहीं जाता था, वही काम करता था, चाहे कपड़ा ड्रेस नया नया डिजाइन का जो भी उसको पसंद था वो लाता था, अलंकार लाता था, ऑर्नामेंट्स जो भी, ब्यूटी पार्लर में जो भी उसे पसंद हो, जो भी वो लाता था। इसको ग्राम्य ही मनोरमय ही काम ही कहते, मनोरमय जिसको मन पसंद करता था, मन जिसमें रमता था विषय का, उसको मनोरम कहते। जिस वस्तु को पसंद करती थी और बस केवल हिंट करना था, व्हाट टू डू टुडे, आज क्या करना है, आज क्या खरीदना है, वो सारा लिस्ट बना देती थी और बस उसी में लगा रहता था रात दिन। अब ईश्वर देवता माता पिता आदि तो सपना हो गए, सपने में भी नहीं दिखाई देते हैं, सेवा में, तामेव तोषया मास, उसी की आराधना में ये लगा रहा। आप लोग जिसको बचा रहे हैं जमराज के दूत भगवत पार्षदों पर आक्षेप कर रहे हैं, जिसकी आप लोग रक्षा कर रहे हैं, ये क्या किया है आप तो सुन ही रहे हैं। तो ये वेश्या की आराधना किया है, वेश्या ही इसके लिए भगवान थी, सब कुछ थी। और प्रसिद्धता जथा तथा, जथा प्रसिद्धता तथा, जैसे वो प्रसन्न रहे बस वही काम करता था, वही वस्तु लाता था। तो पिता का सारा धन तो बहुत पहले ही स्वाहा हो चुका था, तो और धन कहां से लाता था। तो उसको जमदूत आगे कहेंगे, जतस ततस चुप निन्न न्याय तो अन्याय तो धनम, न्याय से अन्याय से जैसे भी हो धन कहीं ना कहीं से लाता था। चार काम करता था धन प्राप्ति के लिए, अपहरण करता था किसी को, कुछ दिन बंदी रह करके पैसा लेकर छोड़ता था, बंदी अक्ष जुआ खेलता था, जुआ में भी ट्रिक से इसको कुछ पैसे मिलते थे, और कैतव, कैतव का अर्थ है झूठ बोलकर कपट करके, किसी से लोन लेता था, हम आपको दे देंगे, हम आपको इंटरेस्ट के साथ दे देंगे, लेकिन मूल भी कभी नहीं देता था, इसको कपट कहते, धूर्तता। तो और अंत में चोरी, चोरी द्वारा धन, चार इसके बिजनेस थे, अपहरण और जुआ, झूठ कपट और चोरी, इसके द्वारा धन कमा। पिता के पास कितना धन था, वो बेचारे ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे, थोड़ा था, उसको तो दो चार दिन में ही खत्म कर दिया। इसलिए जावता पित्रेण पहले जमदूतगण कह रहे, जितना धन था उतना से तो तृप्त किया, और जिसको संतुष्ट करना चाहिए था उसको यह दुष्ट कभी नहीं संतुष्ट किया। जिस लड़की के साथ विवाह हुआ था, बेचारी बहुत अच्छे घर से आई थी, विप्राम स्वभार्जाम अप्रौढ़ाम कुले महत लंबिताम, जिस स्त्री के साथ इसका विवाह हुआ था वह ब्राह्मणी थी, यह भी ब्राह्मण था, वह भी ब्राह्मणी थी, विप्राम और स्वभार्जाम, यह इसकी भार्जा थी। भार्जा कहते हैं पत्नी को जिसका भरण करना चाहिए, भार्या, धर्म है पति का कि अपनी पत्नी का भरण करे। भरण कई तरह से किया जाता है, और इसीलिए पति को भर्तार कहते हैं, भर्तार का अर्थ है भरण करने वाला। भरण का यहां अर्थ है कि उसको भोजन देना, उसको कपड़ा देना, उसको घर देना, उसको संतान देना, गहना देना, उसे प्रसन्न रखने की चेष्टा करना, ये सब इस भरण शब्द है। तो जिसका भरण करना चाहिए था, धर्म था, जिसको अलंकार देना, वस्त्र देना, भोजन देना, मनोरंजन करना, जिसका जिसको करना इसका धर्म था, उसको कभी नहीं किया यह पापी। तो विप्राम स्वभार्जन अप्रहण कुले महति लंबिताम, बड़े उच्च कुल की वह थी, वहां से इसका विवाह हुआ, उसका विवाह हुआ था, लेकिन विषसर्ज अचिरात पाप, लेकिन जब ही घर में लाया वेश्या को, अचिरात शीघ्र ही दो चार दिन के बाद ही अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, स्वर्णिया पंग विद्ध थी, उस स्वर्णी के तिरछी नजर से इसका हृदय विद्ध हो गया था। जब घर में वेश्या आई तो उसने कहा ये कौन है, सीधा देख करके नहीं कही, तिरछी नजर से देख करके, ये कौन है घर में तुम्हारे, ये कौन रह रही है, अगर इसको नहीं निकालोगे तो मैं आज ही चली जाऊंगी। वेश्या ने ऐसे कहा तो कहा कि बस बस आज ही निकाल देता हूं। ये पापी अपनी परिणीता पत्नी को, विवाहिता पत्नी को निकाल दिया, और उस वेश्या को ला करके घर में रखा, और रह करके उसी की आराधना किया है आज तक, उसी को संतुष्ट करने में जीवन बिताया है। जो धर्म है किसी व्यक्ति का, अपनी पत्नी का पालन, वो तो छोड़ दिया, और जो महा अधर्म है एक वेश्या को ला करके घर में रखना और उसी के लिए जीवन बिताना, काम करना, यह इस तरह का पाप किया है। और इसके पापों की कथा पहले सुखदेव गोस्वामी भी कह ही चुके हैं। तो प्रश्न होता है, मान लीजिए भगवान के पार्षदों ने पूछा कि अरे पिता का धन कितना था कि उसको संतुष्ट किया, बाद में कहां से धन लाता था? तब कहते हैं, जतस ततस च उपनिन्ये न्यायतो अन्यायतो धनम बभारास्य कुटुंबिन्य कुटुंब मंद धीरायम अयम मंद धीः यह दुर्बुद्धि यह अल्प बुद्धि। जतस ततस धनम उपनिन्ये, जहां तहां से धन लाता था। ये तो ग्रह किसी को लग जाता है ऐसे विचेतन था ही, जैसे जहां से भी धन मिलता था लाता था, न्यायतः अन्यायतः, चाहे न्याय से मिले चाहे अन्याय से मिले, जैसे भी मिले। यहाँ न्याय ये इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी कोई एकाध पैसा न्याय से मिल जाता होगा, लेकिन बाकी तो यह अपहरण चोरी और जुआ ही कौन न्याय है? अथवा जुए में कुछ जीत लेता था तो इसको न्याय हो सकता है कि उसी के लिए कह रहे हो? न्याय से और न्याय से जहां तहां से जैसे भी मिले धन लाता था, और धन ला करके अपने उसी आराध्य को वेश्या को तृप्त करता था। यह इतना पापी, धन कमाने में धन लूटने में जो पाप किया, किसी को दुख दिया वो तो अलग है, और अपनी पत्नी को दुख दिया, और माता पिता, जैसा कि अजामिल स्वयं ही आगे कहेगा, माता पिता जब कहे अरे बेटा ये कहां से तुम ला दिए, ये कौन की कहां की स्त्री है, क्यों ला दिए इस घर में, तो उसी दिन उनको निकाल दिया था। उसी दिन जिस दिन घर में लाया वेश्या को, माता पिता को निकाल दिया। माता पिता उसी गांव में रहते थे और सब लोग गांव के देख रहे थे कि माता पिता को निकाल दिया है, कहीं से वेश्या लाया है और अपनी पत्नी को भी अब निकाल देगा, पत्नी को भी दो चार दिन में निकाल दिया। इस तरह का पापी, वो बेचारे कितना तप्त रहते होंगे माता पिता। एक तो अपजस अपकीर्ति चारों तरफ फैली थी कि उनका बेटा ऐसा हो गया, उच्च कोटि का ब्राह्मण और ब्राह्मण के घर में उसका बेटा वेश्या ला करके रखे, और उसके लिए रोज चोरी हिंसा इधर उधर करके उसका भरण पोषण करके, बभार अस्य कुटुंबिन्या कुटुंब मंद धीरे, उस कुटुंबिनी के कुटुंब का पालन कर रहा था। ऐसे कह रहे हैं, कुटुंबिनी कुटुंब वाली, परिवार वाली के परिवार का पालन कर रहा था। ऐसा नहीं कह रहे हैं जमराज के दूत की अपने परिवार का पालन कर रहा था, वो इसका परिवार नहीं था। एक वेश्या को कोई पुत्र हो कुछ हो तो कौन मानेगा किसका है? तो बहुत पुरुषों से उसका समागम होता है, तो उसके 10 पुत्र थे उस वेश्या के, तो इसीलिए जमदूत कह रहे हैं कि वेश्या के परिवार का पालन करता था। ये नहीं कह रहे कि अपने परिवार का पालन करता था, अपने परिवार का पालन तो करना ही चाहिए, लेकिन यह दुष्ट वेश्या के परिवार का पालन कर रहा था। अस्याह कुटुंबिन्या कुटुंबम बभार, पालन करता था जहां तहां से धन ला करके। एक तो धन भी बहुत गलत तरीके से लाता था, और धन के द्वारा पोषण किसका करता था, जिसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का पालन कर रहा था। यदि मनुष्य मान लीजिए धन कमाने में कुछ पाप करे और पाप करके धन लाता है, तो धन से यदि माता पिता का पालन करे, पत्नी का पालन करे, पुत्र का पालन करे, तो यह तो ठीक है, ये धर्म माना गया है, वह चलो कुछ गलत करके भी परिवार का पालन करे, लेकिन यह तो सब तरह की गलती करके पाप करके धन लाता था और वेश्या के परिवार का पालन करता था, तो वेश्या का परिवार क्या होगा? वो लोग भी सब ऐसे ही भ्रष्ट होंगे जहां तहां, उनका पालन करना बहुत बड़ा पाप था। जदसौ शास्त्र मूल लंघ्य स्वैरचारी आर्ज गर्हित अवर्त चिराम कालम अघाई और सुचिर मलात। तो चूंकि अब बता रहे हैं कि हम लोग क्यों इसको नरक में ले जाना चाहते हैं, यह शास्त्र का उल्लंघन करके स्वैरचारी हुआ है, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण किया है, आर्ज गर्हित, श्रेष्ठ पुरुषों ने ऐसे कर्मों की भूरी भूरी निंदा की है, इसकी निंदा सब जगह लोक में है। यदि आप लोगों को कोई संदेह है तो इसके गांव में और लोगों से पूछ लीजिए कि कैसा रहा है, हम लोग कोई भूल नहीं कर रहे हैं। आर्ज गर्हित, जितने श्रेष्ठ लोग हैं सबके द्वारा यह निंदित रहा है, सब निंदा करते हैं, इसने शास्त्र का उल्लंघन किया है, स्वेच्छा से आचरण किया है, स्वच्छंद आचरण किया है और बहुत काल तक इसने बुरा आचरण किया, यह अघायु है, पापमय इसकी आयु है, पाप में ही इसकी जिंदगी गई है। ये दुष्ट 88 वर्ष का है और अब तक उसी वेश्या के साथ रहा है। अघायु रसुचि, यह महा अशुद्ध है, यह पापी है। मलात, यह वास्तव में मल से पोसा हुआ है, अरे उस वेश्या का जूठा खाता था, ये वेश्या का जूठा शराब पी करके गिलास में छोड़ देती थी तो उसको प्रसाद की तरह खाता था, उसको पीता था, और उसका जूठा पहले वो खा लेती थी उसके बाद खाता था। तो जमराज के दूत कह रहे कि ये मल खा रहा था, इसका जीवन पूरा पापमय है, पापमय है। ततएनम दंडपाणे सकाशम कृत किलविषम निश्यामो अकृत निर्विषम जत्र दंडेन शुद्धेति, इसलिए हम इसको दंडपाणी के पास ले जाएंगे। जमराज जी हाथ में दंड लिए रहते हैं, इसको दंडपाणी कहते हैं, भगवान इंद्र को वज्रपाणी कहते हैं और भगवान विष्णु चक्रपाणी, तो जमराज जी को दंडपाणी कहते हैं। तो दंड पाणी के पास हम लोग ले जाएंगे इसको, क्योंकि इसने अपने पापों का कोई प्रायश्चित नहीं किया है। अकृत निर्वेशम, अकृत प्रायश्चितम, कोई प्रायश्चित नहीं किया है, बहुत पाप किया है, इसलिए हम लोग जमराज जी के पास ले जाएंगे और इसके हित के लिए ले जाएंगे, हम लोग इसके बैरी नहीं हैं, इसको शुद्ध करने के लिए ले जाएंगे। वहां ले जाकर हम लोग इसको शुद्ध करेंगे, शुद्ध करेंगे, कैसे शुद्ध करेंगे, दंडे न जत्र दंडेन शुद्ध्यति, विविध प्रकार से इसको मारेंगे, तपाएंगे, काटेंगे, डंडा से मारेंगे और कई तरह से सताएंगे, अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तो इसके हित के लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ, हम लोग दुश्मन नहीं है इसके, इसलिए इसको छोड़िए हम लोग ले जाएं। अब इतना सुन करके भगवान के पार्षद तो इतना अद्भुत ढंग से बोले, कहे ओहो जिनको इस जगत में सुप्रीम जज नियुक्त किया गया है और उनके द्वारा ऐसी भूल, जमराज जी जैसे व्यक्ति ये न समझ पाए कि भगवान नाम उच्चारण करने से सारे पाप नष्ट हो गए, यह बहुत शोक की बात है। भगवान के पार्षद कह रहे हैं इतना ज्ञान नहीं, ठीक है पापों की कथा तो कहे, एक जन्म के पाप की कथा कहे, लेकिन भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसके कोटि जन्मों के पापों का प्रायश्चित उसी समय हो गया जिस समय इसने नारायण नाम का उच्चारण किया, तुमको ये पता नहीं है। तो इस विषय में कल कहा जाएगा, प्रसंग बदल रहा है, भगवान के पार्षदों का प्रवचन 2 दिन टोआ को मंदिर में होगा। हमने देखा है कहीं कहीं यज्ञ होता है तो वक्ता बुलाए जाते हैं, कहाँ से, काशी जी से आए हैं, वृंदावन से आए हैं, हरिद्वार से आए हैं, अयोध्या से आए हैं, लेकिन ये भागवत के जो वक्ता है नाम महिमा के, ये वैकुंठ से आकर बोल रहे हैं ये सुनने योग्य है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।